الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس کے اندر ہم مقدمہ معرف القرآن پڑھتے ہیں، معرف القرآن کی جلد نمبر 1 میں سے. اور اس میں جو پچھلے ہفتے ہم نے موضوع شروع کر لیا تھا، وہ تھا تلاوت میں آسانی پیدا کرنے کے اقدامات، یعنی اجمیوں کے لیے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تلاوت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا کیا امت کے علماء مشائخ نے اقدامات اٹھائے. تو اس میں ہم نے نقطے اور حرکات کے بارے میں غالباً پڑھ لیا تھا، یا صرف نقطوں کے بارے میں پڑھ لیا تھا. ایک بڑی اہم بات جو پچھلی کلاس میں ہم نے سنی تھی وہ یہ تھی کہ عربوں کے درمیان جو ہے وہ نقطے لگا کر کے لکھنا، یہ یعنی پڑھنے والے سے بدگمانی کے مترادف تھا. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے کہ اردو زبان میں آپ کسی کو جو ہے وہ خط لکھیں اور اس میں جو ہے وہ زیر زبر پیش ساتھ لگا کر کے دیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ اردو میں زیر زبر پیش کسی کو لگا کے کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کو اردو پڑھنی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ یو آر میکنگ شیور کہ وہ اردو صحیح طرح سے پڑھ سکے، ہے نا؟ تو عرب بھی جو ہے نا وہ اسی وجہ سے نقطے اور حرکات تو بالکل ہی نہیں لگاتے تھے، لیکن نقطے بھی نہیں لگاتے تھے، حالانکہ نقطے جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے تھے اس زمانے میں. ٹھیک ہے، مائک والیوم تو میں کیسے بڑھاؤں گا، لیکن آپ، ہاں یہ ایڈمن صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ریکنیکٹ کر لیں یا اپنے اسپیکر کا والیوم جو ہے وہ بڑھا کے دیکھیں. تو ایک تو یہ بات اہم تھی جو کہ عمومی طور پر ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ بھی جو ابھی ہو گئی کہ نقطوں کی ایجاد جو ہے نا وہ اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی. اچھا، پھر حرکات کے بارے میں شاید ہم نے نہیں پڑھا تھا کہ نقطوں کی طرح شروع میں، یہ پیج نمبر 45 پر ہے، کہ نقطوں کی طرح شروع میں قرآن کریم پر حرکات یعنی زیر زبر پیش، اردو میں زیر زبر پیش کہتے ہیں، فارسی میں بھی زیر زبر پیش کہتے ہیں، اور عربی میں فتحہ اور کسرہ اور ضمہ کہتے ہیں، ضاد سے ضمہ، تو وہ ابھی نہیں تھیں. اور اس میں بھی روایات کا بڑا اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کس نے حرکات لگائیں. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ کام سب سے پہلے ابو الاسود دولی رحمتہ اللہ علیہ نے انجام دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ کام حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم لیثی رحمتہ اللہ علیہم سے کرایا. اچھا، یہاں پہ ہم نے وہ دوسری والی بات شروع کر دی تھی کہ حجاج بن یوسف جو تھا وہ ظالم جابر بے شک تھا، اور وہ زمانے کے مشائخ خصوصاً حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کے اس کے ساتھ اختلاف ہی چلتا رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود نہ تو حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے اس کے خلاف بغاوت کا فتویٰ دیا، اور نہ ہی جو ہے وہ جو جائز کام اس نے شروع کرائے جیسے قرآن مجید کے اوپر حرکات لگوانا یا نقطے لگوانا، تو ان کاموں کے اندر انہوں نے روڑے اٹکائے، راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں، بلکہ ان معاملات میں ساتھ مل کر کے ہی کام کر لیا. ٹھیک ہے، اب اس کی جو بھی وجہ تھی، بظاہر یہی وجہ لگتی ہے جیسے کہ آج کے علماء کی وجہ بنتی ہے حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنے کی، کہ بھائی کنفرنٹیشن جو ہے نا وہ نہیں چاہتے، حکومت سے کنفرنٹیشن جو ہے یہ فساد. اور حکومت بھی کن کی ہے؟ نام کے تو مسلمان ہیں نا، وہ تو بھائی ہم بھی نام کے ہی مسلمان ہیں، رائٹ؟ ہم اپنے آپ کو زیادہ اچھا مسلمان سمجھتے ہیں، حکومت والوں کو جو ہے وہ منافق اور کافر اور یہ سب کچھ سمجھتے ہیں. اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں تو ہم میں اور ہمارے حکمرانوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، کوئی خاص فرق، بلکہ اب تو وہ بھی داڑیاں اگانا شروع ہو گئے ہیں، ہے نا؟ پہلے تو وہ داڑیاں نہیں اگاتے تھے، اب تو وہ بھی داڑیاں اگانا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ بھی جو ہے نا وہ بڑے ایسے ایسے کام کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو اب جو ہے نا، اب آپ کچھ اور آگے کرنے کی کوشش کریں، ورنہ وہ دے ول کیچ اپ ٹو یو ویری سون. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو کنفرنٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، क्योंकि अगर होगी तो फिर सारे जो है ना वो भाग के बैठ जाएंगे और मौलवियों को जो है ना तोपों के सामने बंधने के लिए छोड़ देंगे, जैसे पहले छोड़ दिया था तोपों के सामने बंद करके उड़ने के लिए मौलवियों को पहले भी छोड़ दिया था, लटकने के लिए हर दरख्त से जो है वो मौलवी लटका होता था पहले भी छोड़ दिया था आवाम ने, है ना। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है और उनमें मुसलमान कितने ज्यादा हैं, अगर सारे के सारे मिल के अंग्रेज फौज के ऊपर धावा बोल देते तो वो किसी मौलवी को लटका सकते थे, हैं किसी मौलवी को लटका सकते थे, उनकी मजाल नहीं थी कि वो किसी मौलवी को लटकाते, लेकिन आवाम ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, खड़े बल्कि तमाशा देखते रहे। तो इस वजह से उलमा जो है ना वो अलहमदुल्ला इतनी तो माशाल्लाह अकलमंद होते हैं कि वो फिर हुकूमतों से जो है ना वो खामखा का पंगा नहीं लेते। बहरहाल हक बात बताना और समझाना ये अलग चीज़ है, वो उनका उनकी जिम्मेदारी है तो वो करते रहते हैं। इस सिलसिले में तमाम रिवायात को पेश नज़र रख कर ऐसा मालूम होता है कि हरकत सबसे पहले अबुल अस्वद दौली रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ा की, लेकिन ये हरकत उस तरह की न थी जैसी आजकल राइज हैं, बल्कि ज़बर के लिए हर्फ के ऊपर एक नुक्ता, ज़ेर के लिए हर्फ के नीचे एक नुक्ता और पेश के लिए हर्फ के सामने एक नुक्ता, ठीक है, यानी जेर जबर पेश भी जो है ना वो भी नुक्तों से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, नुक्ते बहैसियत नुक्ता अभी भी नहीं डाले, है ना, अभी भी जो है वो जेर जबर पेश के लिए ही जो है वो नुक्ते डाले। तो अच्छा, और तनवीन के लिए दो नुक्ते ऊपर, दो नुक्ते नीचे और दो नुक्ते सामने मुकर्रर किए गए, जैसे कि किताब के अंदर बनाया हुआ है। अब आपके सामने किताब नहीं है तो दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, ठीक है ना, किताब रखें अपने सामने अगर नहीं है तो। बाद में खलील बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने हमजा और तशदीद की अलामतें वज़ा की। अच्छा, इसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने यहया बिन युअम्मर रहमतुल्लाह अलैह, नसर बिन आसिम लैसी और हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैहिम से बैक वक्त कुरान करीम पर नुक्ते और हरकात दोनों लगाने की फरमाइश की। इस मौके पर हरकात के इजहार के लिए नुक्तों की बजाय जेर जबर पेश की मौजूदा सूरतें मुकर्रर की गईं ताकि हरूफ के जाती नुक्तों से उनका इल्तिबास पेश ना आए। वल्लाहु सुभानहु व तआला आलम, ठीक है, यानी ग्रेजुअली है ना ऑन नीड बेसिस, जैसे जैसे जरूरत महसूस होती गई, कभी अब जो लोग आ रहे हैं दीन इस्लाम के अंदर मुसलमान हो रहे हैं अब उनके लिए नुक्तों की जो के हरूफ के अपने जाती नुक्ते होते हैं, बा ता सा जीम चे चे तो होता नहीं है उर्दू में, राइट, खा, राइट, तो इनके अपने नुक्तों की भी जरूरत है उन लोगों को, अब जरूरत पड़ रही है तो जब जरूरत पड़ रही है और कोई नाजायज काम नहीं करना पड़ा जरूरत को पूरी करने के लिए तो फिर नुक्ते लगाने शुरू कर दिए, और जब नुक्ते लगाने शुरू कर दिए तो फिर अब ये हरकात वाले नुक्ते जो हैं ये फिर रिडंडेंट हो गए, तो फिर उनकी जगह जो है वो डंडे लगाने शुरू कर दिए हैं, डंडा और वो जो है वो छोटा सा एक पेश जिसको कहते हैं वो लगाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये उसूल है कि जब जरूरत पेश आती है और उसको किसी जायज सबब के जरिए से जो शरीयत में जायज है उसके जरिए से जरूरत को पूरा किया जा सकता है तो जरूर पूरा किया जाए, ठीक है ना, ये उसूल है, और ये उसूल जो है वो सिर्फ कुरान मजीद के हरकात में नहीं चलता, ये जिंदगी के हर हर शोबे में चलता है, हर मौके पे चलता है वाला उसूल, पर जरूरी बस ये है कि जायज जरूर जायज तरीका हो, ठीक है। अच्छा, अहजाब या मंजिलें, तो सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्ह और ताबईन रहमतुल्लाह अलैहिम का मामूल था कि वो हर हफ्ते एक कुरान खत्म कर लेते थे, इस मकसद के लिए उन्होंने रोजाना तिलावत की एक मकदार मुकर्रर की हुई थी जिसे हिज्ब या मंजिल कहा जाता है। इस तरह पूरे कुरान को कुल 7 अहजाब पर तकसीम किया गया था, ठीक है, तो जाहिर है हफ्ते में 7 दिन होते हैं, फिर उसके बाद दूसरा हफ्ता शुरू हो जाता है, ठीक है, जुम्मा जुम्मा 8 दिन, तो एक हफ्ते में 2 जुम्मे नहीं होते, एक हफ्ते में एक ही जुम्मा होता है, यानी अगला जुम्मा आने पर वो हफ्ता खत्म अगला हफ्ता शुरू, ठीक है, तो इस तरह से 7 दिन, तो 7 फिर मंजिलें बन गई, 7 अहजाब कहना शुरू कर दिया लोगों, हिस्ब कहना शुरू कर दिया उसको, इस तरह से अहजाब बन गई, ठीक है। अज्जा या पारे, तो आजकल कुरान करीम 30 अज्जा पर मुनकसिम है, हमारे हजरत बताते हैं कि उनके वालिद साहब भी जो है ना उसी तरीके से एक हफ्ते में एक कुरान मजीद खत्म किया करते थे, तो वो भी इसी तरह से मंजिल या हिजब के हिसाब से। अच्छा, मंजिल का लफ्ज़ जो है वो उसके अलावा और चीज़ों के ऊपर भी बोला जाता है, ठीक है ना, जैसे वो वजीफ़ों की जो मंजिल होती है तो उसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ कुरान मजीद के सात हिस्से होते हैं, बल्कि उसके अंदर और भी बहुत सारी दुआएं और चीज़ें होती हैं पढ़ने की, जिसको कि ख़वातीन माशाल्लाह बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ने की कोशिश करती हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, हमारे काबरीन का अमल होता था, लेकिन फ़राइज़ को और ज़िम्मेदारियों को तर्क करके मंजिलें नहीं पढ़नी चाहिए। फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को तर्क करके मंजिलें नहीं पढ़नी चाहिए, पीरियड, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मंजिल पढ़ें, जरूर पढ़ें, लेकिन ऑन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ फराइज। अच्छा, अज्जा या पारे, आजकल कुरान करीम 30 अज्जा पर मुनकसिम है, जिन्हें 30 पारे कहा जाता है। ये पारों की तकसीम मानी के एतबार से नहीं है, बल्कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आसानी के ख्याल से 30 मसावी हिस्सों पर तकसीम कर दिया गया है। चुनाचे बाज औकात बिल्कुल अधूरी सी बात पर पारा खत्म हो जाता है। यकीन के साथ ये कहना मुश्किल है कि ये 30 पारों की तकसीम किसने की है। बाज हजरात का ख्याल है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने मसाहिफ नकल कराते वक्त उन्हें 30 मुख्तलिफ सहीफों में लिखवाया था, लिहाजा ये तकसीम आप ही के ज़माने की है, लेकिन मुतकद्दमीन की किताबों में इसकी कोई दलील अहकर को नहीं मिल सकी। ठीक है, यानी मुफ्ती तकी उस्मानी दामन बरकातहम को कोई दलील नहीं मिल सकी। अगर उनको नहीं मिल सकी तो हमारा हमारा तलाश करना जो है ना, वो भी तकरीबन इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि माशाल्लाह मुफ्ती साहब की जो जो यानी बचपन से जो उनकी मुताले का शौक और मुताले की जो वसत है, तो उसका जो है ना, वो हम जैसा बंदा कभी अशर अशीर भी नहीं पा सकता। इनके अपने जो वालिद साहब हैं उनके हालात में ये लिखते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वालिद साहब मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, कि उन्होंने बताया कि दारुल उलूम देवबंद की जो लाइब्रेरी होती थी ना, तो उसमें हजारों किताबें होती थी उनके बचपन के, अब तो लाखों किताबें होती हैं ना, तो उस जमाने में भी हजारों किताबें होती थी। तो वो जो है ना, जो खाने का वक्त होता था ना, जिसमें लाइब्रेरियन साहब जो है वो लाइब्रेरी बंद करके चले जाते थे, तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी उम्र भी बहुत कम थी, लेकिन मैं लाइब्रेरियन साहब से कहता था कि मुझे आप अंदर छोड़ करके बंद कर दें, ताला, बाहर ताला बंद कर दें। तो वो चले जाते थे आराम का वक्फा, खाने का वक्फा, और ये अंदर जो है ना, वो किताबों को पढ़ते रहते थे, हत्ता के सारी किताबें पढ़ ली, यानी दारुलूम देवबंद की लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ ली। फिर उसके बाद अब क्या पढ़ें, तो अब जो है ना, वो जो फटे हुए टुकड़े वगैरह होते हैं ना किताबों के, जो मखतूतात जिनको कहा जाता है, या जो कि जिनको कंपाइल नहीं किया जा सका, बस कहीं जो है ना, वो उसको आपने फाइल में जैसे जमा कर लिया, वो पढ़ने शुरू कर दी। ठीक है, तो इतना पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे। आज तो खाली फौजी इतना पढ़ते हैं, जिनको के डंडे के दौर पर पढ़ाया जाता है, और तो कोई नहीं इतना पढ़ता। जो पढ़ता भी था तो अब जो है वो फोन के आने की वजह से जो है वो अब कुतुब बीनी खत्म हो गई, हाँ कुतुब बीनी भी खत्म हो गई, और कुतुब बीनी भी खत्म हो गई, अब सिर्फ और सिर्फ फोन बीनी रह गई। बीनी कहते हैं देखने को, ठीक है ना, तो अब सारे के सारे फोन बीन कर रहे होते हैं, फोन बीनी। तो इस वजह से मुताले की जो है वो मौत है। ये जो फोन है ना, ये सेल फोन और हेल फोन, ये मुताले की मौत है। ठीक है, अल्लाह इससे बचाए, कम से कम हमारे बच्चों को तो बचाए हैं, तो उनको फोन जो है ना, वो उनसे दूर रखा करें, ये फोन उनको उनके पास ना फटकने दें, जब तक जो है ना वो मजबूरी ना हो जाए उनको, क्योंकि फोन के आने के बाद अब वो मुताला नहीं कर सकते, अब वो किताब की शक्ल नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर किताब अच्छी किताब है, वो भी हर किस्म की किताब नहीं, अच्छी किताबों में मुताला करना ये इंतहाई अहम चीज़ है, और फोन के साथ ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जितना डिले कर सकते हैं फोन को, टैब को, गैजेट्स को दूर रखें उनसे। फिर जब बाहर निकलेंगे, और फिर जो है वो हर चीज़ ही जो है वो आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी, और फिर जो है वो इवन कॉलेज का स्केड्यूल भी, और कॉलेज की क्लासेस, और यूनिवर्सिटी के सारा काम, या इवन मदरसे की चीज़ें जो है व्हाट्सएप के ऊपर आ रही होंगी, फिर तो देना पड़ जाएगा ना, फिर तो थोड़ी आपसे दूर रख सकेंगे, जब तक रख सकते हैं उतना रखें। अच्छा, तो 30 पारों में फिर हाँ, तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि जी मुझे तो नहीं मिली। सही है, मुतकद्दमीन उनको कहते हैं जो शुरू के जनरेशन थी ना, उनमें ये कोई एग्जैक्टली हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जी इतने साल तक जितने लोग थे उनको मुतकदमीन कहा जाता है और उनके बाद जो लोग आए उनको मुताखिरीन कहा जाता है ना। ये दो टर्म्स हैं, मुतकदमीन यानी पहले आने वाले और मुताखिरीन आखिर में आने वाले यानी बाद में आने वाले। ठीक है, तो अब ये कहाँ पे मुतकदमीन का पीरियड ख़त्म होता है और कहाँ पे मुताखिरीन का पीरियड शुरू होता है, मुख्तलिफ अकवाल हैं इसके ऊपर। कोई कहते हैं कि मतलब उलमा ही, कोई कोई कहते हैं कि जी पहली 3 सदियाँ जो थी ना ये मुतकदमीन की कहलाती हैं और उनके बाद वाली जो है वो मुताखिरीन की कहलाती हैं। कोई खसूसा जो अहनाफ होते हैं वो कहते हैं कि जी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह थे तो उन तक जो फुकहा आए वो मुतकद्दमीन कहलाते हैं और उनके बाद जो फुकहा आए वो मुताखरीन कहलाते हैं। ठीक है ना, तो अब हालांकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल जो है वो 200 साल मुकम्मल होने से पहले ही हो गया था। ठीक है, 200 हिजरी से पहले ही हो गया था, तो अब वो एक डिफरेंट किस्म की तकसीम है। बहरहाल अंदाजन यही है कि शुरू के लोग, तो मुतकद्दमीन की किताबों में इसकी कोई दलील अहकर को नहीं मिल सकी। अलबत्ता अल्लामा बदरुद्दीन जरकशी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि कुरान के 30 पारे मशहूर चले आते हैं और मदारिस के कुरानी नुस्खों में उनका रिवाज है। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि यह तकसीम अहले सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद तालीम की सहूलत के लिए की गई है। वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अखमास और आशार, तो कुरून उला के कुरानी नुस्खों में एक और अलामत का रिवाज था। कुरून उला वही बिल्कुल इब्तदाई ना, पहली 3 जनरेशन को कुरून उला कहा जाता है। और वो ये के 5 आयतों के बाद हाशिए पर यानी साइड की तरफ जो है ना सफ़े के, तो साइड का हो या ऊपर का हो या जो फुट नोट और या क्या हेडर फुट नोट या साइड की जो जगह होती है थोड़ी सी बची हुई तो उसको हाशिया कहा जाता है, तो मार्जिन्स भी अंग्रेजी में उनको कह सकते हैं। तो वहाँ ना अखमास हर 5 आयत के बाद अखमास की अलामत डाल देते थे और दूसरी किस्म की अलामत को आशार कहा जाता था, जो कि 10 आयत के बाद आशार की अलामत लिख देते थे। तो उलमा मुतकद्दमीन में ये इख्तलाफ भी रहा है कि बाज़ हजरात इन अलामतों को जायज़ और बाज़ मकरूह समझते थे। यकीनी तौर से ये कहना भी मुश्किल है कि ये अलामतें सबसे पहले किसने लगाई। एक कौल ये है कि उसका मूजिब भी हज्जाज बिन यूसुफ था और दूसरा कौल ये है कि सबसे पहले अब्बासी खलीफा मामून ने उसका हुक्म दिया था। लेकिन ये दोनों अकवाल इसलिए दुरुस्त मालूम नहीं होते कि खुद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में आशार का तसव्वुर मिलता है। चुनाचे हज़रत मसरूक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मसहफ में आशार का निशान डालने को मकरूह समझते। ठीक है, तो जब अब्दुल्ला इब्ने मसूद रतान का ये कॉल इन्होंने नकल किया है मसरूक रहमतुल्लाह अलैह ने, इसका मतलब यह है कि आशार की जो अलामत डालनी शुरू की गई ना ये उस ज़माने की बात है, बिल्कुल इब्तदाई नबी अलैहिस्सलाम के फ़ौरन बाद का ही कोई ज़माना होगा जब मसहफ वगैरह बन चुके थे। ठीक है, तो ये अखमास और आशार की अलामत ये भी बस इस तरह से कि भाई 5 आयात हो गई, 10 आयात हो गई, तो हिसाब हिसाब रखना कि अभी मैंने इतनी आयात पढ़ ली है। अच्छा, फिर रुकू की अलामत जिससे कि हम सब ही वाकिफ़ हैं, तो फरमाते हैं कि अखमास और आशार की अलामतें तो बाद में मतरूक हो गई, लेकिन एक और अलामत जो आज तक राइज चली आती है रुकू की अलामत है और इसकी तायीन कुरान करीम के मजामीन के लिहाज से की गई है। यानी जहाँ एक सिलसिला कलाम
दो
हुआ वहाँ रुकू की अलामत बना दी गई। ठीक है, तो हाशिए के ऊपर ऐन लिखा हुआ होता है रुकू की अलामत के लिए। ठीक है, तो ये फिर मजमून के एतबार से यानी कोई टॉपिक चल रहा है ना तो वो फिर जैसे कि बिल्कुल सूरह बकरा से अगर आप देखें तो जहाँ पे अल्लाह ताला मोमिनीन और काफिरीन की तारीफ फरमाते हैं, डेफिनेशन फरमाते हैं ना, तो वो जैसे ख़त्म होती है तो रुकू। ठीक है, फिर उसके बाद मुनाफिकीन की एक लंबी डिस्क्रिप्शन है तो वो फिर एक रुकू के अंदर मुनाफिकीन की पूरी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। फिर उसके बाद जो है एक अल्लाह ताला जो है वो आम इंसानों को मुखातिब फरमाते हैं, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ठीक है ना, तो ये आम इंसानों को जो है वो खिताब किया जा रहा है कि देखो तुम्हारे लिए अल्लाह ने जो है वो कैसी कैसी नेमतें बनाई हैं, जमीन को बनाया है फिराश और आसमान को बनाया है छत के तौर पर और आसमान से जो है पानी, ये सारी चीजें। तो ये पूरा का पूरा एक रुकू हो गया, ठीक है। और उसके बाद यानी एक रुकू ये आम खिताब इंसानों को, उसके बाद जो है ना वो फिर अगला रुकू शुरू होता है आदम अलैहिस्सलाम वाला वाकया, ठीक है। तो आदम अलैहिस्सलाम का वाकया देखें कितना अहम है, कि कौन सा वाला रुकू है, ये चौथा रुकू जो है वो कुरान मजीद के अंदर आदम अलैहिस्सलाम के वाकये के ऊपर। और फिर उसके बाद जो है ना फिर तो वो तांता बन जाता है या बनी इसराइल, पांचवा रुकू जो है वो या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ठीक है ना। और फिर ये बनी इसराइल के जो है ना रुकू चलते जाते हैं चलते जाते हैं। और फिर विद इन बनी इसराइल वाकया बहुत सारे छोटे 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 खिताब जो है वो छोटे छोटे रुकुओं के अंदर तोड़ दिए गए, ठीक है। तो रुकू की अलामत है और इसकी तालीम कुरान करीम के मजामीन के लिहाज से की गई है, यानी जहां एक सिलसिला कलाम खत्म हुआ वहां रुकू की अलामत हाशिए पर हर्फ आयन बना दी गई। एहकर को जस्तजू के बावजूद, यानी अपने आप को कह रहे हैं मुस्तफ़ी साहब कि एहकर मैं तो सबसे ज्यादा हकीर हूँ, एहकर सबसे ज्यादा हकीर को कहते हैं, तो जस्तजू के बावजूद मुस्तनद तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि रुकू की इब्तदा किसने और किस दौर में की। आज जो है वो बड़े मजे की एक बात हुई कि किसी ने जो है ना वो जो तमाशे चल रहे हैं दुनिया के अंदर, कभी कहीं के तमाशे कभी कहीं के तमाशे, तो किसी ने जो है ना वो लिख करके भेजा कि मुस्तनद जराए अबलाग, मुस्तनद जराए अबलाग। मुझसे भी रहा नहीं गया, मैंने जवाब दिया ये क्या चीज होती है, ये किस बला को कहते हैं, मुस्तनद जराए अबलाग है, ये दोनों चीजें एक 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 साथ जमा हो सकती हैं, यानी जराए अबलाग आजकल कौन से हैं, मीडिया और सोशल मीडिया, ठीक है ना। और उसके साथ आप मुस्तनद का लफ्ज लगा रहे हैं तो ये तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो गई ना है? ये जराए अबलाग जो हैं ये मुस्तनद किधर से हो गए, ये कहाँ से कौन सी बला आ गई है, ये मुस्तनद जराए अबलाग है। लेकिन सुभान अल्लाह हमारी क्या शान है कि हम थूथू भी करते हैं लानतें भी देते हैं और फिर साथ साथ जो है ना वो उसके ऊपर आमन्ना व सदकना भी कहते हैं, कभी कोई खबर आ रही है कभी कोई तज्जिया आ रहा है। अच्छा बड़े मजे के कोई तज्जिया भेजता है तो उसको भी ना थोड़ा सा एहतमाल होता है कि यार पता नहीं मेरे तज्जिए को जो है ना लोग लिफ्ट कराएंगे कि नहीं कराएंगे, तो वो अपने तज्जिए के साथ जो है ना किसी मशहूर नाम को लिख करके भेज देता है और लोग जो है ना उसको उसी की तरफ से समझ करके पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर उसको आगे भी फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से एक बड़े मशहूर मुफ्ती साहब हैं तो उनके नाम से किसी ने जो है ना वो पोस्ट चला दी, अब वो पोस्ट होते होते उनके अपने पास पहुंच गई, तो उन्होंने फिर वॉइस रिकॉर्डिंग करके किसी को जवाब दिया कि भाई आज मुझे पता चला कि मेरी कि मैंने ये तहरीर लिखी है, राइट, आज मुझे पता चला कि मैंने ये तहरीर लिखी है, ठीक है। तो ये तमाशे जो हैं वो चल रहे हैं, अल्लाह में हिदायत अता फरमाए और अकल सलीम अता फरमाए, हम इस इन जराए अबलाग के ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ना ट्रस्ट किया करें, खुदा के वास्ते ना ट्रस्ट किया करें इनके ऊपर, ठीक है। बहरहाल रुकू तो बात हो रही थी मुस्तनद तौर पर, ठीक है। तो एहतर को जस्तजू के बावजूद मुस्तनद तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि रुकू की इब्तदा किसने और किस दौर में की। अलबत्ता ये बात ये तकरीबन यकीनी है कि इस अलामत का मकसद आयात की ऐसी मुतवस्सत मकदार की तआयीन है जो एक रिकत में पढ़ी जा सके, और इसको रुकू इसीलिए कहते हैं कि नमाज में इस जगह पहुंचकर रुकू किया जाए। पूरे कुरान में 540 रुकू हैं। इस तरह अगर तरावी की हर रिकत में एक रुकू पढ़ा जाए तो 27वीं शब में कुरान करीम खत्म हो सकता है, ठीक है। क्योंकि तरावी की कितनी रिकतें होती हैं, 20 रिकतें, है ना, 20, 8 नहीं होती, वो तहज्जुद की 8 होती हैं, तरावी की 8 नहीं होती, तरावी की 20 होती हैं। तो अच्छा 20 भी कोई फर्ज नहीं है, लेकिन उम्मत का इस बात के ऊपर ज्यादा इत्तेफाक है कि 20 ही होती हैं, वरना 32 भी पढ़ी जाती हैं, 32 भी पढ़ी जाती हैं, और जो है वो थोड़ी सी कम और थोड़ी सी ज्यादा भी पढ़ी जाती हैं, लेकिन 20 के ऊपर मेजॉरिटी जो है वो 20 के ऊपर मुत्तफिक है। 8 तो कहीं से भी नहीं है, यानी 8 का तो जो है ना कोई कोई वजूद ही नहीं है। बहरहाल जो 8 कहते थे अब जो है ना वो 4 कहते हैं, माशाल्लाह हमने सुना कि कुछ जगहों पे अब 4 होती है खाली, राइट, कल को ये वो उसको 2 कर देंगे उसके बाद फिर उसको 0 कर देंगे, तो भी जो है वो इत्तफाक हो जाएगा सबका। बहरहाल तो 540 जो है ना, वो तो फिर 20 से अगर ज़रब दें तो फिर कितनी बनती हैं, 27। ठीक है, तो 20 रिकतें जो है वो 27 दिन तक पढ़ी जाएं तो फिर पूरा कुरान मजीद खत्म हो जाता है, सुभान अल्लाह। ठीक है, आफ्टर तरावी द लैलतुल कदर नमाज, लैलतुल कदर नमाज नहीं, कयामुल लैल, आप लैलतुल कदर को गलत बोल गए, कयामुल लैल नमाज जो होती है ना वो असल में तहज्जुद होती है। ठीक है, बहरहाल वो हमारे यहाँ तो तहज्जुद जो है वो जमात के साथ नहीं पढ़ी जा सकती है, लेकिन पढ़ लेते हैं तो ठीक है, इनके यहाँ होगा इसके ऊपर फतवा। बहरहाल तो 27वीं शब में कुरान करीम ख़त्म हो सकता है। अच्छा, रुमूज़ अवकाफ, तो तिलावत और तजवीद की सहूलत के लिए एक और मुफीद काम ये किया गया कि मुख्तलिफ कुरानी जुमलों पर ऐसे इशारे लिख दिए गए जिनसे ये मालूम हो सके कि इस जगह वक्फ करना, ठीक है, यानी रुकना, वक्फ का मतलब होता है रुकना, रुकने से मुराद ये कि आप जब एक, यानी कहते हैं एक सांस में जुमला कह दिया, तो अब जब सांस लेने के लिए रुक रहा है तो उसको वक्फ करना कहेंगे ना, ठीक है, सांस लेने के लिए रुक रहा है तो उसको वक्फ करना। तो अब ये जो इशारे लगाए गए तो इससे मालूम हो सके कि इस जगह वक्फ करना कैसा है, यानी जायज़ है, नाजायज़ है, वाजिब है, या जो है वो मुस्तहब है, या जो है वो मुबाह है। तो इन इशारात को रुमूज़ औकाफ कहते हैं, औकाफ यानी वक्फ की जमा, औकाफ, और रमज यानी निशाना, तो रुमूज़ औकाफ यानी औकाफ के निशाना। और उनका मकसद ये है कि एक गैर अरबी दान इंसान भी जब तिलावत करे तो सही मकाम पर वक्फ कर सके और गलत जगह सांस तोड़ने से मानी में कोई तब्दीली पैदा ना हो जाए। जैसे कि उर्दू में बड़े आसान सी मिसाल हमारे मशायर बताते हैं ना, उठो मत बैठो, उठो मत बैठो, ये भी तो हो सकता है, और उठो मत बैठो, ये भी तो हो सकता है। अब आप जो है वो जहां पे वक्फ कर रहे हैं तो उससे जो है वो हुक्म बदल गया ना, कि आप उठने का हुक्म दे रहे हैं कि आप बैठने का हुक्म दे रहे हैं, या ना बैठने का हुक्म दे रहे हैं, उठो मत बैठो, ठीक है ना। तो मत के बाद आप वक्फ करेंगे तो फिर सुनने वाला समझेगा कि मना किया जा रहा है उठने से, बल्कि बैठने को हुक्म दिया जा रहा है। और अगर आप उठो के बाद वक्फ करेंगे और मत बैठो एक साथ कह देंगे तो फिर क्या हुक्म बन गया, कि खड़े हो जाओ बैठो मत, है ना। तो इस मिसाल से जो है वो मसला हल हो जाता है कि मकसद ये है कि एक गैर अबीदान इंसान भी जब तिलावत करे तो सही मकाम पर वक्फ कर सके, क्योंकि गलत जगह सांस तोड़ने से मानी में कोई तब्दीली पैदा हो सकती है ना। इनमें से अक्सर रुमूज सबसे पहले अल्लामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तैफूर सजावंदी रहमतुल्लाह ने वजा फरमाए, नशफिल किराआत अशर। इन रुमूज की तफसील ये है कि तौ जहाँ लिखा हुआ होता है तो ये वक्फ मुतलक, मुतलक का तौ ले लिया अलामत के लिए, तो वक्फ मुतलक का मुखफ्फ है, यानी ड्राइव वो शॉर्टन फॉर्म है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ बात पूरी हो गई है इसलिए यहाँ वक्फ करना बेहतर है। जीम का मतलब ये वक्फ जायज़ का मुखफ्फ है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ वक्फ करना जायज़ है, ठीक है, जायज़ यानी अलाउड है, परमिसिबल है, ठीक है, वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अलाउड है। तो वहाँ पर भी बेहतर है कि कर लें, ना भी करें तो भी यानी वक्फ ना करना भी जायज़ है। तौ का मतलब क्या हुआ कि वक्फ ना करना भी जायज़ है, और जीम का मतलब क्या है कि वक्फ करना जायज़ है। थोड़ा सा ये सेटल किस्म का, ज़ाहिर है दोनों में फ़र्क है। फिर ज़ा या ज़े जो लिखा होता है ये वक्फ़ मुजव्वज़ का मुखफ्फ है, जिसका मतलब यह है कि वक्फ करना दुरुस्त तो है लेकिन बेहतर यह है कि वक्फ ना किया जाए, ठीक है। तो तौ का उल्टा जो है ना वो ज़ा हो गया, बेहतर है कि वक्फ ना किया जाए। सौद ये वक्फ मुरख़्ख़स का मुखफ्फ है, और इसका मतलब यह है कि इस जगह बात तो पूरी नहीं हुई लेकिन जुमला चूंकि तवील हो गया है इसलिए सांस लेने के लिए दूसरे मकामात की बजाय यहाँ वक्फ करना चाहिए, ठीक है। अब ये बहुत तफसील में मैं जा भी नहीं सकता, मेरा इतना फील्ड भी नहीं है, तो कोई कारी साहब हैं उनके साथ आप बड़े तफसील से अगर कोई सवाल वगैरह भी आपके जहन में है तो ज़रूर से पूछ लिए, लेकिन कुर्रा हज़रात का ये ज़्यादा अच्छा ये मैदान है। बहरहाल सादा सी एक्सप्लेनेशन है, मेरे ख्याल में कोई समझना मुश्किल तो नहीं है किसी के लिए। फिर मीम, ये वक्फ लाजिम का मुखफ्फफ है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ वक्फ ना किया जाए तो आयत के मानी में फुहश गलती का इम्कान है। फुहश गलती कहते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा मतलब मानी बदल जाए ना, लिहाजा यहाँ वक्फ वक्फ करना ज़्यादा बेहतर है। बाद हजार से वक्फ वाजिब भी कहते हैं, लेकिन इससे मुराद फिकही वाजिब नहीं है कि जिसके तर्क से गुनाह हो, बल्कि मकसद सिर्फ ये है कि तमाम औकाफ में इस जगह वक्फ करना सबसे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप किसी और जगह पे वक्फ करें, यहाँ पे वक्फ करना जो है ना वो बेहतर है, सबसे ज्यादा बेहतर है। फिर लाम अलिफ ला, ये ला तकिफ का मुखफ्फफ है, इसका मतलब यह है कि यहाँ ना ठहरो। लेकिन इसका मंशा ये नहीं कि यहाँ वक्फ करना नाजायज है, बल्कि इसमें बहुत से मकामात ऐसे हैं जहाँ वक्फ करने में कोई हर्ज नहीं, और इसके बाद वाले लफ्ज़ से इब्तिदा करना भी जायज़ है। यानी बिल्कुल सांस तोड़ करके फिर उसके बाद इसके लाम अलिफ के बाद जो लफ्ज़ आता है वहाँ से इब्तिदा करना ये भी जायज़ है। लिहाजा इसका सही मतलब ये है कि अगर यहाँ वक्फ किया जाए तो बेहतर ये है कि इसे दोबारा लौटा कर पढ़ा जाए, अगले लफ्ज़ से इब्तिदा करना मुस्तहसन नहीं है। ठीक है, यानी बहुत अच्छा नहीं है लेकिन कर सकते हैं अगले लफ्ज से भी इब्तिदा। अब ये सोचें, मजे की बात तो इसमें यह है ना कि यानी उम्मत ने कुरान के ऊपर कितना जो है, अच्छा उस जमाने में कोई वो क्या कहते हैं उसको कंपाइलर्स भी तो नहीं थे ना, कंप्यूटर के कंपाइलर्स जिसके अंदर जो है वो हम प्रोग्राम लिखते हैं, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, फोर्ट्रान में लिखा, या आजकल को पता नहीं किस लैंग्वेज में लिखा जिसमें भी है, पाइथन वगैरह आजकल बड़ी मकबूल है, तो वो लिख करके जो है ना फिर वो एक बटन दबाते हैं तो वो जो है कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होते हैं वो उसको कंपाइल करना शुरू कर देते हैं, कोड के जैसे उनके अंदर कोड फीड हुआ हुआ होता है। तो अब जो है ना वो कुछ भी बना करके निकाल दें, है ना, किसी किस्म की भी समरी बना दें, किसी किस्म की भी स्टैटिस्टिक्स बना दें, तो वो बड़े से बड़ा जो किताब है मैनुअल है तो उसकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है जो ये काम कर रहा होता है। कुरान मजीद जो अच्छी माशाल्लाह अच्छी खासी किताब है, मोटी मतलब, तो कोई इतनी पतली भी किताब नहीं है, सही है, उसमें ये सारी चीजें हैं कि ये एग्जैक्टली इसका ये मतलब है, एग्जैक्टली ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, इसके लिए कितना जो है वो अर्कनेजी के साथ जो है वो लोग पढ़ते होंगे। और फिर ये जो अलामात बनी हैं तो अब ऐसी बनाई, जिसने भी बनाई, किसी एक बंदे ने बनाई, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ये बनती गई बनती गई बनती गई, लेकिन ये ऐसी बनी है कि इससे इसमें कोई एरर्स वगैरह नहीं निकल रहे कि भाई अब आज के दिन जो है ना वो कोई इसमें से कोई एरर निकाल करके जो है वो पता चला है कि नहीं जी ऐसा ऐसा सही नहीं है, वहां पे तो इख्तलाफ है इसके अंदर, यहाँ पे इख्तलाफ नहीं, बस जबरदस्त है। तो उम्मत ने भी माशाल्लाह कुरान के ऊपर खूब अपना जहन और वक्त और अपनी सलाहियतें लगाई। अच्छा, इन रमूज के बारे में तो यकीन है तो आप पर साबित है कि ये अल्लामा सजावंदी रहमतुल्लाह अलैह के वज़ा किए हुए हैं, तो चलें ये भी लिखा हुआ है इनके ही वज़ा किए हुए हैं। उनके अलावा भी बाज़ रमूज कुरान करीम के नुस्खों में मौजूद हैं, मसलन मा, ये मुआनिका का मुखफ्फफ है, ये अलामत उस जगह लिखी जाती है जहाँ एक ही आयत की दो तफसीरें मुमकिन हैं, एक तफसीर के मुताबिक वक्फ एक जगह होगा और दूसरी तफसीर के मुताबिक दूसरी जगह होगा, लिहाजा उनमें से किसी एक जगह वक्फ किया जा सकता है, लेकिन एक जगह वक्फ करने के बाद दूसरी जगह वक्फ करना दुरुस्त नहीं है। मसलन ज़ालिका मसलुहुम फिल तौरात व मसलुहुम फिल इंजील कज़रअन अखरज शक़अहू। ठीक है, ये सूरह मोहम्मद की तो नहीं है ना ये आयत हाफिज साहब, ये सूरह मोहम्मद के बाद कौन सी आयत, तो फतह, जी जज़ाकुम, सूरह फतह की। ठीक है, तो इसमें अगर तौरात पर वक्फ कर लिया तो फिर अल इंजील पर वक्फ दुरुस्त नहीं, और अगर अल इंजील पर वक्फ करना है तो अत्तौरात पर वक्फ दुरुस्त नहीं, हाँ दोनों जगह वक्फ ना करें तो दुरुस्त है। तो इसका एक नाम मुकाबला भी है, और इसकी सबसे पहले निशानदही इमाम अबुल फजल राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई है। ठीक है, तो अगर तौरात पर वक्फ कर लिया तो फिर क्या बनेगा कि ज़ालिक मसलुहुम फित तौरात, ये उनकी मिसाल, ठीक है, यानी उनकी डिस्क्रिप्शन, किनकी, सहाबा कराम की डिस्क्रिप्शन तौरात में है, वह मसलुहुम फिल इंजील, और उनकी डिस्क्रिप्शन या उनकी जो मिसाल, उनकी जो तमसील बयान की गई है इंजील के अंदर, कज़रअन अखरज शतअहू, कि जैसे कि कोई खेती जो है ना, जिसके अंदर से जो है वो निकलती है वाली, ठीक है। तो अब जो है वो तौरात पे वक्फ कर लिया, तो फिर इंजील पर वक्फ दुरुस्त नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो मसल हूँ फिर इंजील कजर इन अखराज शतः हूँ, ठीक है। और इंजील के अंदर उनकी मिसाल कैसे है, कजर इन अखराज शतः हूँ, ऐसे है, ठीक है। और अगर इंजील पर वक्फ करना है तो फिर अतौरात पे वक्फ नहीं करना, तो फिर क्या बनेगा, जाले का मसल हूँ फिर तौरात ही वो मसल हूँ फिर इंजील, कि इंजील और तौरात दोनों के अंदर उनकी मिसाल कैसी है, कजर इन अखराज शतः, ठीक है। दोनों के अंदर उनकी ऐसे एक तरीके से दोनों किताबों के अंदर उनकी मिसाल है, सहाबा कराम की मिसाल है ना, यानी नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र तो था ही पिछली किताबों के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम के असहाब का भी जिक्र था पिछली किताबों के अंदर, और कुरान मजीद उसके ऊपर सराहतन जो है वो गवाही दे रहा है कि ऐसा था। बहरहाल तो ये फिर मुख्तलिफ तफासीर के हिसाब से दोनों तरह से वक्त करने जायज़ हैं, अगर इस तरह करेंगे तो ये मतलब बनेगा, उस तरह करेंगे तो थोड़ा सा मुख्तलिफ मतलब बनेगा। अच्छा, सकता, ये सकता की अलामत है और इसका मकसद ये है कि इस जगह रुकना चाहिए लेकिन सांस ना टूटने पाए। ये अमूमन उस जगह लाया जाता है जहां मिलाकर पढ़ने में मानी में गलत फहमी का अंदेशा हो। सूरह कयामा के अंदर भी सकता है और फिर बहुत सारी जगहों पर है कुरान मजीद के अंदर, तो मिलाकर पढ़ने से मानी में गलत फहमी का अंदेशा हो, तो फिर सांस ना टूटने पाए लेकिन रुक जाना। अच्छा, अंदेशा हो, ये जरूरी नहीं है कि फोहिश गलती हो जाए, लेकिन अंदेशा है गलती होने का। वक्फा, इस जगह सकते से कदरे ज्यादा देर तक रुकना चाहिए लेकिन सांस यहाँ भी ना टूटे। और काफ, ये कीला अलैहिल वक्फ का मुखफ्फफ है, कीला अलैहिल वक्फू, यानी कहा गया कि इसके ऊपर वक्फ, ठीक है, कीला अलैहिल वक्फ, कहा गया है कि इसके ऊपर वक्फ करना चाहिए, मतलब ये है कि बाज हजरात के नजदीक यहाँ वक्फ है और बाज के नजदीक नहीं है। जब इस तरह से मजहूल बात की जाती है ना, तो फिर वो यानी 50-50% होती है, सूरह मुतफ़िफ़ीन में भी डेफिनेटली। अच्छा, फिर किफ, ये लफ्ज़ किफ है जिसके मानी है ठहर जाओ, और ये उस जगह लाया जाता है जहाँ पढ़ने वाले को ये ख्याल हो सकता है कि यहाँ वक्फ दुरुस्त नहीं है, तो वहाँ पर किफ बाकायदा हुक्म रुक जाओ। फिर सल्ला, ये अलवसलु अवला का मुखफ़फ़ है जिसके मानी है कि मिलाकर पढ़ना बेहतर है, अवला है, अफजल है। और सल, ये कद यूसलू का मुखफ़फ़ है, यानी यहाँ बाज़ लोग ठहरते हैं और बाज़ मिला कर पढ़ने को पसंद करते हैं। और वक्फ़ुन नबी, वक़फ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उन मुकामात पर लिखा जाता है कि जहाँ किसी रिवायत की रूह से साबित है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत करते हुए इस जगह वक्फ फरमाया था, ठीक है। तो सहाबा तो कान लगा के सुनते रहते थे और याद भी रखते थे और फौरन दूसरों को भी बताते थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे पढ़ा और ऐसे कहा और ऐसे किया, और है? तो जाहिर है फिर ये अलामत जो है वो वहाँ से भी आई है, ठीक है। बस ये हमने अलामत यानी रमूज़ औकाफ़ पढ़ लिए, अब आगे बढ़ते हैं, टाइम थोड़ा सा रह गया है, तो असल में अब हमें इल्म तफसीर की तरफ इंशाल्लाह बढ़ना है अगली क्लास के अंदर। तो कुरान करीम की तबाअत, ये एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ से खाली है, तो पढ़ लेते हैं कि जब तक प्रेस ईजाद नहीं हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस, मशीन वगैरह ईजाद नहीं हुई थी, तो कुरान करीम के तमाम नुस्खे कलम से लिखे जाते थे, और हर दौर में ऐसे कातिबों की एक बड़ी जमात मौजूद रही है जिसका किताबत कुरान के सिवा कोई मशगला नहीं था। इवन औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्ला अलैह, राइट, यानी मुगल बादशाह थे और हमारे मशायख उनके लिए रहमतुल्ला अलैह कि बहुत बड़े वलीउल्लाह भी थे, ठीक है। तो वो किताबत कुरान करके जो है ना, वो अपना यानी काम चलाते थे, अपना खर्चा पूरा किया करते थे। तो कुरान करीम के हरूफ को बेहतर से बेहतर अंदाज में लिखने के लिए मुसलमानों ने जो मेहनतें की और जिस तरह इस अजीम किताब के साथ अपने वालेहाना शगुफ का इजहार किया, उसकी एक बड़ी मुफस्सल और दिलचस्प तारीख है जिसके लिए मुस्तकिल तसनीफ चाहिए, यहाँ उसकी तफसील का मौका नहीं है। फिर जब प्रेस ईजाद हुआ तो सबसे पहले हैम्बर्ग के मुकाम पर, यानी जर्मनी के अंदर जो हैम्बर्ग का शहर है, उस मुकाम पर 1113 हिजरी में कुरान करीम तबाह हुआ। अभी कौन सी चल रही है, 1446 है ना, तो तकरीबन 300 से ज़्यादा, 350 के करीब साल से, साल पहले जो है वो कुरान करीम तबाह हुआ, जिसका एक नुस्खा अब तक दारुल कुतुब अल मिसरिया में मौजूद है। उसके बाद मुतअद्दिद मुस्तशरिकीन ने कुरान करीम के नुस्खे तबाह करवाए। मुस्तशरिकीन ये उन गैर मुस्लिम उलमा को कहा जाता है, गैर मुस्लिम स्कॉलर्स के, जो के रहते तो मगरब में हैं लेकिन वो ईस्टर्न रिलीजन्स को स्टडी करते हैं, खुसूसन इस्लाम को, ठीक है, तो ईस्टर्न रिलीजन्स को स्टडी करने की वजह से उनको जो है वो मुस्तशरिकीन में कहा जाता है। तो उन लोगों ने फिर कुरान करीम के नुस्खे तबाह करवाए, लेकिन इस्लामी दुनिया में उनको कबूलियत हासिल ना हो सकी, है ना, अगरचे कि वो दौर जो था ना वो मुसलमानों के जवाल का दौर था, ओरिएंटलिस्ट उनको अंग्रेज कहते हैं। जी जजाकुल्ला। तो तबाह मीन्स पब्लिश, हाँ तबाह का मतलब पब्लिश करना, तो से तबाह। तो अगरचे के मुसलमानों के जवाल का दौर था, यानी मुस्लिम एम्पायर जो थी ना वो नीचे जा रही थी, गुरूब हो रहा था मुसलमानों का सूरज, लेकिन फिर भी इतनी अकल समझ बाकी थी उनके अंदर कि जो गैर मुस्लिम है ना तो उनसे जो है ना वो हम नहीं ले सकते अपना कुरान, उनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो कैसे उसको प्रिंट कर रहे हैं और कैसे जो है वो उसको, ठीक है। तो मुसलमानों ने करवा लिया हैम्बर्ग के मुकाम के ऊपर, एक दफा 1113 में हैम्बर्ग के मुकाम पे किसने करवाया होगा, मोस्ट लाइकली वही सल्तनत उस्मानिया, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया जो थी उसका जर्मनी के साथ जो है वो बड़ा गहरा रिश्ता, ठीक है, पहले भी था, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है वो वही फिर जो जर्मनी के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था, तो फिर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी को भी शिकस्त हुई और सल्तनत उस्मानिया भी लपेट गई उसके अंदर ही, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद जो ओरिएंटलिस्ट ने अपने तौर पे जो प्रिंट करवाया ना तो उसको कबूलियत हासिल नहीं हो सकी, मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। आज पता नहीं हमें क्या हो गया है, पता नहीं तो खैर नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमें पता है हमें क्या हो गया है, सीधी सी बात है हमें पता है हमें क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। हम जो है वो उनकी कही हुई बातें, उनके सोर्सेस से आई हुई बातें जो है उनको मुस्तनद, राइट, मुस्तनद, अल्लाह अकबर बोलना चाहिए, तो अजीब मामला। खैर, तो इसके बाद मुसलमानों में सबसे पहले मौलाए उस्मान, यानी सल्तनत उस्मानी ही के, तो जो भी थे मौलाए उस्मान, तो उन्होंने रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में 1787 ईस्वी में कुरान करीम का एक नुस्खा तबाह करवाया। इसी तरह काजान में भी एक नुस्खा छापा गया, ये गालबन काजान जो है वो चेचनिया और जो है वो क्या नाम है दूसरी के करीब जो है, तो वहाँ के किसी जगह का शहर का नाम है, काजान में भी एक नुस्खा छापा गया, यानी बेसिकली ये सोवियत जार के अंडर जो इलाके होते थे। तो 1828 में ईरान के शहर तेहरान में कुरान करीम को पत्थर पर तबाह किया गया, फिर उसके मतबूआ नुस्खे दुनिया भर में आम हो गए, पत्थर के ऊपर कार्व करके जो है वो लिखा गया, तो वो तेहरान में भी ये वाला काम हुआ। तो तफसील के लिए मुलाहिजा हो तारीख अल कुरान लिल कुर्दी वगैरह, ठीक है। अब जो है वो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर इल्म तफसीर के ऊपर इंशाल्लाह हम बात शुरू करेंगे, किसी को कोई आज की क्लास से मुतालिक सवाल हो या कोई कमेंट वगैरह हो आप चैनल विंडो के ऊपर लिख के पूछ सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि इन 15 लाइन कुरान एवरी पेज एंड्स विद एन आया अनलाइक इन 16 लाइन कुरान, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल भाई, इट इज पॉसिबल, उन्होंने अरेंज किया है ना किसी तरीके से, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे अरेंज किया। अब लिखने वाले और इस तरह से तबाह करने वाले जो था ना, माशाल्लाह ये उनकी जहानत थी, ये उनकी जो है वो कैसे उन्होंने उन चीज़ों का ख्याल रखा होगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो तो था नहीं ना ये काम करने के लिए, वरना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से तो आप अभी कुछ भी कर सकते हैं इस तरह के काम, लेकिन माशाल्लाह उन लोगों ने अपनी मेहनतों से किया इंसान। अच्छा कुरान मजीद के ऊपर उबूर की हम तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते ना कि उम्मत ने कुरान मजीद के ऊपर कैसे कैसे उबूर हासिल किए हैं ना, ठीक है। यानी अभी मैं कल जो है वो हज़रत अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या फिर किसी ने जो है वो शेयर किया था, तो जो हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह का वो वाला बड़ा इबरतनाक जो वाक़या नकल किया अपनी आप बीती के अंदर, तो उसमें जो है वो फिर मैंने पढ़ा कि उनको जो है ना कुरान मजीद हिफ्ज़ खाली नहीं था बल्कि सातों क़िराअतों के साथ हिफ्ज़ था। और यानी ये तो खैर बहुत सारे लोगों का हिफ्ज़ होता है, लेकिन कोई और भी चीज़ ऐसी लिखी हुई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी कुरान मजीद के हिफ्ज से मुताल्लिक ना, वो अभी मेरे जहन में नहीं आ रही। 30,000 तो हदीसें उनको हिफ्ज थी तो वो, लेकिन 30,000 तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं है, उन लोगों को तो लाखों हदीसें, दो दो तीन तीन लाख हदीसें लोगों ने हिफ्ज करी हैं, लेकिन उनको 30,000 थी। लेकिन कुरान मजीद के बारे में कोई बहुत ही जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की बात लिखी हुई थी उनको, ऐसे जो है वो कितनी क़िरातें जो है वो हिफ्ज थी। तो और फिर आजकल जो वो कुरान कंप्यूटर हैं, वो जो लड़क बच्चे होते हैं मदरसों वाले पाकिस्तान के अंदर भी, वहाँ से शुरू हुआ कराची के किसी मदरसे से, और अब जो है वो बहुत आम हो गया ये तो कुरान मजीद के कंप्यूटर्स। तो अब उनका जो जो अबूर होता है कुरान मजीद के ऊपर, अल्लाह अकबर, हैरान रह जाता है इंसान। ठीक है, तो इस किताब के साथ तो बस एक हम थोड़ा सा, बाकी चीज़ों हमने बहुत ज़बरदस्त कर ली हैं, लेकिन बस एक अमल और अहकाम की हिफाजत वाले काम भी अगर हम कर लें ना, फिर तो बस उसके बाद कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी फिर अल्लाह ताला सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बाकी बस वो ज़रा जो है ना वो हमसे इस पर कोताही हो रही है, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे और इंशाल्लाह हम वो भी कर लेंगे दोबारा से। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। वाखिरु दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।